न्यायों की किताब न्यायों अध्याय एक। आइए हम अपनी अपनी बाइबल में न्यायों की पुस्तक का अध्याय एक खोलें। मूसा के द्वारा परमेश्वर इसराइल के वंशजों को मिस्र से निकालकर लाया और उन्हें एक राष्ट्र का रूप प्रदान करते हुए उनके राष्ट्र की स्थापना आरंभ की। मूसा की मृत्यु के बाद उसके दास यहोशू ने प्रतिज्ञा के देश में उनकी अगुवाई की। परमेश्वर ने उनके पूर्वज इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी थी कि वो देश उनका होगा और वे वहां वास करेंगे, और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। न्यायों की पुस्तक उनके इतिहास में अब दूसरे चरण का विवरण है। इसराइल पर लगभग 13 न्यायी रहे थे जो उनके अगुआ थे। वे उनके मामलों का न्याय करते थे। वे अगुआ अवश्य थे, परंतु उन्हें शासक होने का जनमत प्राप्त नहीं था। वे यहोशू के बाद और राजाओं के आगमन से पूर्व इसराइल के अगुए थे। राजाओं के युग का सर्वप्रथम राजा शौल हुआ था। न्यायियों की पुस्तक यहोशू की मृत्यु के बाद से लेकर शमूएल के आगमन के बीच के समय का इतिहास है। शमूएल इसराइल का अंतिम न्यायी था और उसी ने शौल का राज्य अभिषेक किया था। शौल के राजा बन जाने पर इसराइल की सरकार ईश्वरीय सरकार से हटकर मानवीय सरकार बन गई थी। परमेश्वर की सरकार सफल न हो पाई क्योंकि प्रजा परमेश्वर की प्रभुता के अधीन नहीं रहती थी। न्यायियों की पुस्तक में हम उनकी उभरती हुई नई शैली को देखते हैं, जो वास्तव में एक त्रासदी ही थी। ये वो समय था जब परमेश्वर ने उन्हें सुख चैन आराम का आशीषित समय दिया, अर्थात उन्हें युद्धों से राहत प्राप्त हो गई थी। वे बाल और अश्तेर तथा कनानियों और परिजियों हितियों जबूबियों आदि के देवताओं की पूजा करने लगे थे। उनके इस ईश्वर त्याग के कारण यहोवा उन्हें दंड स्वरूप उनके बैरियों के अधीन कर देता था जो उनका शोषण करते थे। जब वे परमेश्वर को पुकारते थे तब परमेश्वर एक न्यायी का उदय करके उन्हें मुक्ति दिलाता था। जब तक वो न्यायी जीवित रहता था तब तक वे ईश्वर परायण बने रहते थे और समृद्ध होते थे। जो ही वो न्यायी मर जाता त्यों ही वे फिर से बाल की और वृक्ष कुंजों की पूजा आरंभ कर देते। इस प्रकार उनकी ईश्वर भक्ति डावाडोल ही रहती थी। न्यायियों की पुस्तक यहोशू की मृत्यु के विवरण से आरंभ होती है। यहोशू के मरने के बाद इसराइलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। न्यायियों एक का एक। यहोशू की पुस्तक का समापन होते समय इसराइल के वंशज प्रतिज्ञा के देश में तो पहुंच गए थे, परंतु उन्होंने अभी तक संपूर्ण देश पर अपना अधिकार नहीं किया था। यहूदा ने शिमोन से कहा, तुम हमें अपने पूरे क्षेत्र पर अधिकार करने में सहायता करो, तब हम भी तुम्हारे विजय अभियान में तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि शिमोन यहूदा के क्षेत्र से परे दक्षिणी छोर पर था। इस प्रकार यहूदा ने अपनी विरासत में आए क्षेत्र पर अधिकार किया। जब यहोशू की मृत्यु हो गई तब उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि अब इस क्षेत्र को लेने के लिए जिसे परमेश्वर ने दिया है कौन सा गोत्र पहला कदम उठाए। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। न्यायियों एक का दूसरा पद। आपको ध्यान होगा कि यहूदा को यरूशलेम के दक्षिण का क्षेत्र दिया गया था। अतः यहूदा के गोत्र ने शिमोन के गोत्र से कहा, जो उनके भी दक्षिण में था, कि वे उनकी सहायता करें। तदोपरांत यहूदा का गोत्र भूमि पर अधिकार करने में उनकी सहायता करेगा। इस प्रकार यहूदा ने शिमोन के सहयोग से अपना विजय अभियान आरंभ किया और परमेश्वर द्वारा दिए गए नगरों को जीता। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उसे लड़े। न्यायों 1:4-5 पद। अदोनी का अर्थ है प्रभु, अर्थात बेजेक का प्रभु या राजा। उन्होंने उसे बंदी बनाकर उसके हाथ और पैर के अंगूठे काट दिए। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे, जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वो मर गया। न्यायियों 1:7 पद। बेजेक का राजा का ये अभ्यास था कि पराजित राजाओं के हाथ पांव के अंगूठे काटकर उन्हें जानवर की भांति अपनी मेज के नीचे रखें। उसे अपनी करनी का आभास हुआ। उसने कहा कि जैसे उसने 70 राजाओं के साथ किया था, परमेश्वर ने उसके साथ भी कर दिया। बाइबल में लिखा है, जैसे मनुष्य बोएगा वैसा ही वो काटेगा। मनुष्य के पास अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब वो कहे, जैसे मैंने किया था परमेश्वर ने भी मेरे साथ वैसा ही किया। न्याय मत करो कि तुम्हारा भी न्याय किया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उन्होंने यरूशलेम को तलवार से मार गिराया और अपने अधीन किया। इसके बाद वे पहाड़ी प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश और नीचे के प्रदेश में रहने वाले कनानियों से लड़ने गए। यहूदा ने हेब्रोन, पुराना नाम किर्यात अरबा, में कनानियों पर चढ़ाई की। तब कालेब ने कहा, जो किर्यात सपेर को नष्ट कर उस पर अधिकार कर ले, उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। न्यायियों 1:12। कालेब के भतीजे ओतेनियल ने किर्यात सपेर को जीत लिया और अक्सा से विवाह किया। अक्सा ने अपने पिता से दहेज में प्राप्त दक्षिणी प्रदेश के साथ ऊपर और नीचे के जल के सोते भी मांग लिए। पद 21 में फिर वही दुखद घटना है। यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामिनियों ने ना निकाला। न्यायियों 1:21। वे आज तक वहां बिन्यामिन वंशियों के साथ वास करते हैं। फिर यूसुफ के घराने ने बेथेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग था। न्यायियों 1:22। कुछ लोग नगर का भेद लेने के लिए गए तो उन्होंने वहां से निकल रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे कहा कि यदि वो उन्हें उस नगर में जाने का रास्ता बता देगा तो वे उसे जीवित छोड़ देंगे। अतः उस व्यक्ति ने उन्हें वहां का रास्ता बता दिया। इसराइलियों ने बेतेल के निवासियों को मार गिराया और उस पर अधिकार किया, परंतु उस व्यक्ति को और उसके परिवार को सुरक्षित छोड़ दिया। वो व्यक्ति हितियों के नगर में चला गया और वहां अपना नगर बसाया, जिसका नाम उसने लूज रखा, क्योंकि बेथेल का पुराना नाम लूज था। मनुष्य ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, दोर, यिबलाम और मगिदो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। न्यायियों 1:27। मगिदो के खंडर आज भी इसराइल में देखे जा सकते हैं, परंतु जब इसराइली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जबलून ने कित्रेन और नहलोल के निवासियों को ना निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आशेर ने अको, सिदोन, अहलाब, अकजीब, हेलबा, अपीक और राहोब के निवासियों को ना निकाला। न्यायियों 1:28-31 पद। कहने का अर्थ यह है कि उनका विजय अभियान अधूरा ही रहा। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वे उस देश में प्रवेश करने पर वहां के निवासियों का सफाया कर दे, उनसे कोई वाचा ना बांधे, उनके साथ मेल ना रखे, परंतु वे परमेश्वर की आज्ञा मानने से चूक गए। उनका विचार तर्क सम्मत ही था कि वे लोग उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और उनके लिए लकड़ी काटने, खेती करने और निर्माण कार्यों में मजदूरी करेंगे, पर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कैसा भी लाभकारी तर्क क्यों न हो, गलत ही होता है। हमारा भी यही हाल है। कई बार परमेश्वर के निर्देश हमारे तर्क के अनुसार सर्वोच्च लाभ के नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अच्छी योजना बना सकते हैं। हम भी इसराइल के वंशजों के समान समझ नहीं पाते कि परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसका कारण क्या है। हमें तो परमेश्वर के निर्देशों में बुद्धिमानी की बात दिखाई नहीं देती, परंतु परमेश्वर की हर बात में एक तर्क होता है। अतः मेरे लिए परमेश्वर की आज्ञा मान लेने में ही भलाई है, क्योंकि एक दिन हमें अवश्य मालूम होगा कि परमेश्वर के पास एक अविवादित तर्क था जिसके कारण उसने हमें कोई आज्ञा दी। सर्वनाश की आज्ञा अत्यधिक निर्दयी प्रतीत हुई होगी, परंतु परमेश्वर की आज्ञा न मानने का परिणाम उनकी संतानों को भुगतना पड़ा। उन्होंने सोचा था ऐसा करना एक बहुत ही निर्दयी काम है, अतः हम ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और भविष्य में ये उनके वंशजों के लिए सदा की एक समस्या बन गई।